तारीख 26/10/1995 श्री समयसर कलष्टिका श्लोक नंबर 271 पर पूज्य भाई श्री शशिभाईनु भावनगर में प्रवचन सड़ंग प्रवचन नंबर 78 मूल कैसेट में अवाज धीमो छे।
मैं ज्ञान मात्र वस्तु हूँ, चेतना सर्वस्व, चित स्वरूप वस्तु में हूँ और मैं ही ज्ञेय रूप हूँ, मैं ही ज्ञान रूप हूँ और मैं ही ज्ञेय रूप हूँ। मैं ज्ञेय रूप हूँ वो अस्तित्व लिया है, नास्तिक है, परंतु ऐसा ज्ञेय रूप नहीं है। कैसा ज्ञेय रूप? कि अपना जीव से भिन्न छह द्रव्य के समूह उसका जानपना मात्र। इसका भावार्थ ऐसा है कि मैं एक नायक और समस्त छह द्रव्य मेरे ज्ञेय, ऐसा तो नहीं है। मेरे अनुभव में छह द्रव्य विषय नहीं होता है, मेरे अनुभव में तो मेरा स्वरूप ही ज्ञेय रूप अनुभव में आता है। मैं ज्ञान मात्र हूँ और मेरा स्वरूप यही मात्र है। छह द्रव्य के साथ मेरा संबंध वहां रहता नहीं, जानने का संबंध भी छूट जाता है, इसलिए छह द्रव्य मेरा नहीं नहीं है। हेतु क्या है? छह द्रव्य ज्ञेय होने पर भी उसको ज्ञेय नहीं बताना, उसको इस ज्ञेय का निषेध करना, कि यहाँ छह द्रव्य ज्ञेय है इसका निषेध किया है, इसके पीछे हेतु क्या है? हेतु वो है कि जीव के उपयोग वो अंतर्मुख कराने का हेतु है। अब जीव का उपयोग अंतर्मुख होवे, ये इसका धर्म है। उपयोग बहिर्मुख होवे वो जीव का धर्म नहीं है, वो अधर्म है। उपयोग बहिर्मुख होवे वो धर्म नहीं है, तो उपयोग का स्वभाव भी नहीं है ऐसा। वस्तु का स्वभाव भी ऐसा नहीं है कि उपयोग बहिर्मुख रहा करे। भगवान का उपयोग अंतर्मुख रहता है, ये सूचित करता है कि ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का ऐसा ही स्वरूप है। तो यहां ज्ञेयपणा से हमारे कोई प्रयोजन नहीं है, वो ज्ञेयनायक संबंध भी हमारे काम का नहीं है। कोई अपेक्षा से हो तो हो, लेकिन हमारा प्रयोजन से तो कोई संबंध नहीं है इसका। हम छह द्रव्य को जानते रहे, उसमें हमारा प्रयोजन की सिद्धि नहीं है, उसमें हमको सुख नहीं होता है। पर सन्मुख होने में, उपयोग पर सन्मुख होने में हमको सुख नहीं होता है, दुख होता है। तो जिससे दुख हो उसको ज्ञान क्या कहना? वो ज्ञान भी नहीं और उसमें सुख भी नहीं है। वो पहले कलश में बोल दिया कि छह द्रव्य को जानने में जानने वाले को ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं है। इसलिए पर पदार्थ के प्रति के उपयोग को अंतर्मुख कर दो। जो पर पदार्थ सन्मुख उपयोग होता है उसको अंतर्मुख कर दो। परिपूर्ण अंतर्मुख होने से सारा विश्व की प्रसिद्धि हो जाएगी तो भले ही हो जाएगी, लेकिन हमारा अंतर्मुखपना तो छूटेगा
नहीं।
हमें मतलब अंतर्मुख होने में है, बहिर्मुख होने में तो हमारा प्रयोजन का घात होता है, इसलिए यहाँ छह द्रव्य का ग्नेहपना का निषेध किया है कि ऐसा ग्नेह नहीं हूं मेरा, मुझे ही ग्नेह रूप से जानता हूं, मैं क्यों दूसरे को ग्नेह रूप से जानू, मेरा मेरा कोई ग्नेह है नहीं, जाओ मेरा कोई ग्नेह ही नहीं, मेरा आत्मा ही ज्ञान और मेरा आत्मा ही ज्ञेय, बस खत्म। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं रखना है। इसलिए साधक अवस्था के प्रारंभ से ये बात की जाती है, जब साध्य रूप मोक्ष अवस्था होती है तब तो उपयोग बहिर्मुख होता ही नहीं, लेकिन साधक अवस्था के प्रारंभ से भी यही बात कही जाती है कि अंतर्मुख होने में ही धर्म है। इसलिए ज्ञान विशेष में, विशेष ज्ञान में ज्ञेयाकार उत्पन्न हो जाए, जो जो काल में जो जो ज्ञेय की आकृति ज्ञान में आ जाए तो उसका व्यवच्छेद करो, व्यवच्छेद करो मैंने इसको गौण कर दो, उसको तिरोभूत कर दो। 15 गाथा में लिया कि ज्ञेयाकार ज्ञान को व्यवच्छेद करके एकाकार जो ज्ञान है उसको आविर्भूत करो। तो जो एकाकार ज्ञान सामान्य है उसको आविर्भूत करने जाएगा तो जो ज्ञान विशेष अनेक ज्ञेयाकार हो रहा है वो अंतर्मुख हो जाएगा। यही अंतर्मुख होने की एकमात्र विधि है जो 15 गाथा में प्रारंभ में पीठिका में उसकी स्थापना की थी, उसी का अनुमोदन चल रहा है अभी। विषय तो वो का वो चल रहा है, विषयांतर नहीं हो रहा है। तो यहाँ छह द्रव्य का ज्ञेयपना का निषेध करके अंतर्मुख कराते हैं, वही हेतु है इसके पीछे। जी हाँ, प्रत्येक जीव का ज्ञान है वो ज्ञान विशेष भाव में, ज्ञान बहिरंग जो है ज्ञान का, उसमें अनेक ज्ञेयो झलकते हैं। जीव को उस काल में वो ज्ञान विशेष का आविर्भाव अगर हो जाता है तो ज्ञेय लुब्धता होने से ज्ञेयों के प्रति आसक्ति होती है और अनेक प्रकार के राग द्वेष मोह आदि विकार भावों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये ऐसा होने में ज्ञान विशेष का आविर्भाव होना यही कारण है। ज्ञान में ज्ञेयाकार झलकना वो कारण नहीं है, लेकिन ज्ञान विशेष का आविर्भाव होना वो कारण है। उसी काल में ज्ञान सामान्य का आविर्भाव किया जाए तो ज्ञान विशेष का ज्ञेयाकार गौण हो करके वो ज्ञान विशेष अंतर्मुख हो जाएगा। यही अंतर्मुख होने की विधि है। तो अंतर्मुख कराने के हेतु से यहाँ आचार्य श्री उपदेश करते हैं कि तुम छह ज्ञेयों के साथ ज्ञान का जो संबंध जोड़ते हो वो तुम छोड़ दो, तुम्हारे कोई मतलब कोई प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है उसमें, उपयोग को अंतर्मुख करो। और उपयोग को अंतर्मुख करने में अपने स्वरूप को ही ज्ञेय बनाओ, ज्ञाता भी हम हैं और ज्ञेय भी हम हैं। नाता द्रव्य छे अने ज्ञान पर्याय छे अने ज्ञेय एनो विषय ऑब्जेक्ट छे। अहीं स्वज्ञेय लेवू छे, अहीं स्वज्ञेय लेवू छे, अहीं परज्ञेय नो निषेध करवो करे छे। उसमें क्या है कि मुमुक्षु को ऐसी भूल होती है कि शास्त्र की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक हम करें तो सूक्ष्म बढ़ाने की उसमें वृत्ति रहती है, अभिप्राय सूक्ष्म बढ़ाने का रहता है, तो उसमें शांति तो मिलती नहीं। कितना कितना भी शास्त्र की जानकारी हो जाए तो आत्मा को शांति तो मिलती नहीं। शांति तो निर्विकल्प स्वरूप के आश्रय से, निर्विकल्प परिणमन होवे तब शांति होगी, तो वो तो स्वरूप आश्रित परिणमन करना होगा, उपयोग बाहर ले जाएगा उतनी अशांति होगी ही होगी। जो उपयोग बहिर्मुख होता है वो अशांति का उत्पादक है, और जो उपयोग अंतर्मुख होता है वो शांति का उत्पादक है। और हमारा प्रयोजन शांति का है, इसलिए कहते हैं कि छह द्रव्य का निपणा से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। वो भी है, विकल्प मात्र को शांत करना है, और वो विकल्प किसी भी बहाने या किसी भी प्रकार से हो तो निर्विकल्प में बाधा करने वाला है। विकल्प मात्र निर्विकल्प अवस्था आने में बाधा करने वाला है, चाहे वो आत्मा का हो चाहे छह द्रव्यों का हो। जब अपना आत्मा का विकल्प भी निर्विकल्प शांति में बाधक है तो फिर छह द्रव्य का विकल्प तो बाधक है ही है, ये तो फिर परद्रव्य है। बात क्या है कि आगम में वो बात प्रसिद्ध है कि आत्मा स्वपर प्रकाशक है, इसलिए आत्मा ज्ञाता है और छह द्रव्य ज्ञेय है। तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, वो जानकारी मिली उसको पकड़ करके बैठ जाता है जी, उसको पकड़ करके बैठ जाता है। कहते कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध अपने में न अपने में है, तुम ही ज्ञाता हो और तुम ही ज्ञेय हो, इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मैं नायक और समस्त छद्रव्य मेरे ज्ञेय, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है तो कैसा है? कि ऐसा है कि ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृ मदमत वस्तु मात्र ज्ञेय। ज्ञान अर्थात जानपणा रूप शक्ति, ज्ञेय अर्थात जनावा योग्य शक्ति, और ज्ञाता अर्थात अनेक शक्तिये विराजमान वस्तु मात्र, ऐसा तीन भेद मेरा स्वरूप मात्र है, ऐसा ज्ञेय रूप हूं। मैं ही ज्ञाता हूं, मैं ही ज्ञेय हूं और मैं ही ज्ञान हूं, तीनों मेरे में है, मेरे से बाहर कोई ज्ञातापना कुछ है
नहीं।
भावार्थ ऐसा है कि मैं अपने स्वरूप को वेद्य वेदक रूप जानता हूं। देखो कहां ले गए बात को, उसका भावार्थ मैंने सारांश में क्या ले गए कि मैं मेरे स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से जानता हूं, मैं मेरे स्वरूप को जानता हूं ऐसा नहीं लिया, वेद्य वेदक रूप से जानता हूं। वेदन की मुख्यता है, वेदन में जानना आ जाता है, जैसा वेदन है ऐसा जानना आ जाता है। तो वेद्य मैंने वेदावा योग्य भी मैं हूं, और वेदक मैंने, वेदन करने वाला भी मैं हूं। इस तरह से मैं अपने को जानता हूं। मैं विचार से नहीं जानता हूं, मुझे मेरा ख्याल आता है, इस तरह से मुझे मेरा ज्ञान नहीं होता है। मेरा ज्ञान मुझे कैसे होता है, किस तरह से होता है कि वेद्य वेदक रूप से मेरा ज्ञान मुझे होता है। मेरा स्वरूप वेदन करने योग्य है और मैं ही वेदन करने वाला हूं। इस तरह से वेद्य वेदक भाव से ही, वेद्य वेदक रूप अनुभव से ही मुझे मेरा ज्ञान होता है। इसलिए मेरा नाम ज्ञान है। वेद्य वेदक रूप से अनुभव में मैं आता हूं तो मेरा स्वरूप कैसा है ऐसा ज्ञान हुआ अनुभव में, इसलिए मेरा नाम ज्ञान है। और मैं स्वयं अपने द्वारा ही जनाने योग्य हूं, मैं ही मेरे में जनाने योग्य हूं। मेरा स्वरूप ही ज्ञेय रूप मुझे जानने में आता है, इसलिए मेरा नाम ही ज्ञेय है। ज्ञान भी मेरा नाम है, ज्ञेय भी मेरा नाम है। और ऐसी दोनों शक्ति, ज्ञान शक्ति और ज्ञेय शक्ति, वहां से लेकर के अनंत शक्ति रूप हूं, द्रव अनंत शक्ति रूप द्रव हूं, इसलिए मेरा नाम ज्ञाता है। ऐसा नाम मेरा तीन है। नाम ऐसा नाम भेद है, वस्तु भेद
नहीं है,
नहीं है। मैं तो अभेद एक वस्तु हूं, मैं तो अभेद एक वस्तु हूं। समझाने के तौर से तीन भेद कर दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा तीन भेद भी मेरे में नहीं है। मैं जो हूं सो हूं, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता, ऐसा तीन भेद भी मेरे में है नहीं। देखो, पहले तो ज्ञेय ज्ञा एक संबंध का निषेध किया, पुष्प को स्थापित किया, अपना ज्ञेय को स्थापित किया, अन्य ज्ञेय को उत्थापन करके स्वज्ञेय को स्थापित किया। अब स्वज्ञेय को स्थापित करके ज्ञेय ज्ञान का संबंध भी खत्म कर दिया, वो भी नहीं चाहिए। क्योंकि निर्विकल्प अनुभव में मैं ज्ञाता, मैं ज्ञेय, मैं ज्ञान, ऐसा कोई विकल्प होता नहीं। ऐसे भेद के अवलंबन से भी विकल्प होगा, निर्विकल्प शांति नहीं होगी। परद्रव्य का निर्णायक संबंध से तो विकल्प होगा होगा और होगा, लेकिन अपना ज्ञान निर्ज्ञाता, ऐसा तीन भेद करोगे तो भी विकल्प होगा। तो वो तो बात तो मुख्य वो रह गई। परज्ञिक संबंध में भी विकल्प रहता है और स्वज्ञिक संबंध में भी विकल्प रहता है, तो वह बात तो वैसे की वैसे रह गई। क्या फायदा हुआ उससे, कि कोई फायदा
नहीं हुआ।
नहीं, उसमें वो भी निषेध नहीं योग्य है। ऐसा भी तीन भेद अवलंबन करने योग्य नहीं है। तो फिर मैं कैसा हूं कि जीव ज्ञायक है, जीव ज्ञेय रूप है, ऐसा जो वचन भेद, उससे भेद को प्राप्त होता हूं। ऐसा वचन भेद से तो मुझे भेद विकल्प की प्राप्ति होती है, तो मेरा तो प्रयोजन सिद्ध हुआ
नहीं,
वो तो अशांति की अशांति रह गई। इसलिए ऐसा भेद भी मेरे लिए काम का नहीं है। भावार्थ ऐसा है कि वचन का भेद है, वस्तु का भेद
नहीं
है। वो समझाने की बात है वचन से, कि आत्मा ज्ञान में ज्ञाता है, समझाने की बात है। अनुभव करने में वो भेद भी कोई अनुभव में आता नहीं है। अनुभव में भेद का अनुभव ही नहीं है। अनुभव में भेद का अनुभव ही नहीं है। जब अनुभव होता है तो अभेद का ही अनुभव होता है, उसमें कोई भेद अनुभव में आता ही नहीं। वेद का ज्ञान हो जाता है लेकिन अनुभव होता नहीं। ज्ञान होना एक बात है, वो भी ज्ञान सविकल्प ज्ञान नहीं होता है। निर्विकल्प अनुभव में अभेद का ज्ञान होता है, साथ साथ निर्विकल्प भाव से भेद का भी ज्ञान हो जाता है। निर्विकल्प अनुभव में स्व का भी ज्ञान हो जाता है और निर्विकल्प अनुभव में निर्विकल्प रूप से पर का भी ज्ञान हो जाता है, लेकिन निर्विकल्प रूप से। कैसे? कि कोई निर्विकल्प अनुभव से बाहर आया, उनको कोई पूछे कि आपको जब अनुभव हुआ तब आपका अकेला आत्मा का हुआ था कि साथ में कोई और भी था? बोले कि नहीं भाई, मेरे स्वरूप में तो मेरे सिवा कोई था ही नहीं, मैं अकेला आत्मा हूं, भिन्न आत्मा हूं, एक रूप आत्मा हूं, वहां कोई दूसरा द्रव्य भाव है ही नहीं, ऐसा ही अनुभव हुआ था। तो दूसरा नहीं है ऐसी पर की निर्विकल्प नास्ती, अस्ति भी निर्विकल्प और पर की नास्ती भी निर्विकल्प, दोनों का ज्ञान हो गया हमारा। ऐसे अभेद का अनुभव हुआ तो जिसको अभेद का अनुभव होता है उसको ही भेद का सही ज्ञान होता है। निर्विकल्प अनुभव में ही भेद का ज्ञान हो जाता है लेकिन स्वविकल्प रूप नहीं होता है, वो भी निर्विकल्प रूप होता है। कि मैं जानने वाला था, मेरे को ही जानता था और मैं ही वस्तु हूं, ये तीनों भेद का ज्ञान और द्रव्यगुण पर्याय का ज्ञान, उत्पाद ध्रुव का ज्ञान, सब प्रयोजनभूत भेदों का ज्ञान निर्विकल्प दशा में हो जाता है। इसके पहले कोई कल्पना करे तो करो, लेकिन सही ज्ञान तो निर्विकल्प दशा में ही होता है और निर्विकल्प भाव में ही होता है, फिर इसका विकल्प उठा करके समझाने में आता है। अनुभव में ऐसा लगता है, पर्याय पर्याय रहती है, द्रव्य द्रव्य रहता है, लेकिन अनुभव में द्रव्य पर्याय का भिन्न भिन्न भाव रूप से भिन्न भेद रूप से अनुभव होता नहीं है। क्योंकि पर्याय पर्याय होने पर भी द्रव्य के साथ भाव से अभेदता साधती है। मैं ये हूं ऐसा विकल्प नहीं, निर्विकल्प भाव से मैं ये हूं ऐसा द्रव्य के साथ वो अभेद अभेदता साधती है और अपना पर्यायत्व उनको भिन्न अलग अनुभव में रहता नहीं है। खुद पर्याय रूप होने पर भी अपना अलग पर्यायत्व उसको अनुभव में रहता नहीं है, ऐसा बनता है। कुछ भी कहो, उसको श्री कृष्ण के साथ ऐक्य भाव था तो अपना भान भूले, लेकिन वस्तु स्थिति तो बदलती नहीं है, वस्तु स्थिति तो जो है सोई रहेगी। ये 271 कलश हुआ है। अब परमागम सार का वचनामृत नंबर 22 और पेज 9 नंबर का पेज है, गुजराती में 9 नंबर है। स्वरूप का निश्चय, आत्मस्वरूप का निश्चय कैसे करना चाहिए, उस विषय पर ये गुरुदेव श्री का वचनामृत है। जानन पर्याय 22 પાનું 9 જાણન પર્યાય ઓર જાણન ગુણ એસે લક્ષણ દ્વારા આત્મા કો જાન સકે યહ એક હી ઉપાય હૈ દૂસરા કોઈ ઉપાય નહીં હૈ આત્મા કો જાનને કે લીએ જો જાનને વાલી પર્યાય હૈ ઓર ઉસમેં જો જાનને કા ગુણ સ્વભાવ હૈ ઉસકે દ્વારા હી આત્મા કો જાન સકતે હૈ વો સેમ્પલ હૈ વો જાણન પર્યાય હૈ વો સેમ્પલ હૈ કિસકા સેમ્પલ હૈ સેમ્પલ હૈ જ્ઞાન કી જો પર્યાય હૈ વો પૂરા આત્મા કા સેમ્પલ હૈ ઉસમેં જાનને કા ગુણ હૈ વો સ્વભાવ હૈ પર્યાય મેં ગુણ કી અભિવ્યક્તિ હોતી હૈ સાદી ભાષા મેં કહે તો પર્યાય મેં ગુણ પ્રગટ હોતા હૈ જો જ્ઞાન સ્વભાવ હૈ તો જાણરૂપ પર્યાય મેં પ્રગટ હુઆ હૈ ઇસલિયે કહા કે જાણન પર્યાય ઓર જાણન ગુણ એસે લક્ષણ દ્વારા આત્મા કો જાન સકતે હૈ યહ એક હી ઉપાય હૈ દૂસરા કોઈ ઉપાય નહીં હૈ એસા કહ કર કે શ્રી ગુરુ ને અન્યથા જૂઠા મિથ્યા પ્રયત્ન પ્રયાસ પરિશ્રમ કરને કા બંધ કરા દિયા હૈ કે તુમકો આત્મા કો જાનના હૈ ઓર આત્મ શાંતિ કો પ્રાપ્ત કરના હૈ તો એક યહી ઉપાય હૈ તુમ દૂસરા કોઈ ઉપાય મત કરો ઇસકો છોડ કરકે દૂસરા કોઈ ઉપાય મત કરો યે એક હી ઉપાય હૈ દૂસરા કોઈ ઉપાય હૈ નહીં દેખો એ તુમ્હારા જો જ્ઞાન કા પર્યાય હૈ ઉસમેં જ્ઞાન સ્વભાવ પ્રગટ હુઆ હૈ યહી સેમ્પલ સે પૂરા દ્રવ કો જ્ઞાન મેં લે લો નિશ્ચય મેં લે લો જૈસે ગુડ઼ કી એક છોટી સી સેમ્પલ સે પૂરા ગુડ઼ કા જો રવા હોતા હૈ 30 કિલો કા વો કૈસા હૈ વો માલૂમ પડ જાતા હૈ કે ચાવલ પકાતે હૈ ને ચાવલ પકાતે હૈ તો તવા પે તવે થા ઓર ચમચ પે દો ચાર દાને લે લેતે હૈ ટોપિયા મેં સે એક દો દાને કો દબાતે હૈ એક દો દાને કો દબાયા તો પતા ચલ ગયા કે સબ પક ગયા હૈ અગર દબ ગયા તો સબ પક ગયા હૈ યે દો દાના પકા હૈ ઉપયોગ વહાં હૈ ઓર લક્ષ્ય કહાં હૈ પૂરા ટોપિયા પે એસે ઉપયોગ સેમ્પલ પર જાતા હૈ ઓર પૂરા દ્રવ લક્ષ્ય મેં આ જાતા હૈ તો પૂરા દ્રવ એસા હૈ એસા પહેચાન કરને કા નિશ્ચય કરને કા એક તરીકા હૈ આત્મા કી પહેચાન કરને કા એ તરીકા હૈ યે બાત અધ્યાર હૈ કે એસે સ્વરૂપ કી પહેચાન જ્ઞાની ગુરુ કે સિવા કોઈ કરા સકતે હૈ નહીં હૈ ક્યોંકિ બીજ જ્ઞાન હૈ કે સ્વરૂપ કી પહેચાન હૈ વો ક્યા હૈ બીજ જ્ઞાન હૈ તો જિસકો બીજ જ્ઞાન પ્રાપ્ત હૈ વહી કરા સકતા હૈ ઓર જો જ્ઞાની હોતા હૈ વો કરા સકતા હૈ વો બાત કૃપાલુ દેવ ને 471 પત્ર મેં કહી હૈ જો જિસકો બીજ જ્ઞાન પ્રાપ્ત હૈ ઓર આગે ગયા હૈ યા જ્ઞાની હૈ કોઈ ઉસકો કરા સકતા હૈ ઇસકે પહેલે बीज ज्ञान देने वाले ज्ञानी पुरुष की पहचान होती है, तभी ये योग्यता स्वरूप की पहचान की आती है। वो बात सब अध्याय है, हर जगह तो हर बात कह नहीं सकते, लेकिन आगे वाला क्रम समझ लेना चाहिए कि आगे की अवस्था नहीं होती तो पीछे की अवस्था भी नहीं होती। जैसे स्वरूप निश्चय हुए बिना स्वानुभव नहीं होगा, आत्मा की पहचान हुए बिना स्वानुभव नहीं होगा, और स्वानुभव में ही सम्यक दर्शन होता है, तो ऐसे सम्यक दर्शन और स्वानुभव के बिना मुनि दशा नहीं आएगी। मुनि दशा बिना किसी को स्वरूप स्थिरता की श्रेणी नहीं आती, लीनता प्राप्त नहीं होती उतनी, उसके पहले चौथे पांचवें छठे स्थान में लीनता आती है और चली जाती है, लीनता टिकती नहीं, लेकिन छठे सातवें गुण स्थान में पुरुषार्थ बढ़ा तो अंतर्मूर्तक लीनता रही तो केवल ज्ञान होगा। कोई कितना भी ज्ञानी हो चतुर्थ गुण स्थान में क्षायिक सम्यक दृष्टि भरत महाराज जैसे कि रोज निर्विकल्प दशा में आ जाए, रोजाना नहीं लग सकते। वो मुनि दशा छठा सातवां गुण स्थान आए क्षण क्षण में निर्विकल्प हो ऐसी योग्यता हो जाए उसको श्रेणी लगे। सुबह शाम एकाग्र हुए तो भी घंटा कितना बीच में गया, पर मुनि को तो क्षण क्षण में होता है उसको श्रेणी लग सकती है। हाँ, अरे लड़ाई 6 बजे पूरा करे सूर्यास्त के, और 6 बजे और 10 मिनट पर निर्विकल्प दशा में होवे। अरे 6:05 को निर्विकल्प दशा में आ जाए, बहुत समर्थ थे, उतना अभ्यास था आत्मा के अंतर्मुख होने का, उतना प्रैक्टिस था कि जैसा ही दीक्षा लिया तो केवल ज्ञान ले लिया। दीक्षा लेते ही अंतर्मूर्त में छठे गुणस्थान में नहीं आए, चौथे या पांचवें में होंगे, फिर दीक्षा लिया तो सीधा सातवें में आते हैं। दीक्षा लेने वाला छठे में नहीं आता है, छठे तो बाद में आता है, सातवें में आता है। वो तो दीक्षा लिया, ध्यान में बैठे, निर्विकल्प हुए, निकले ही नहीं रे बाहर, श्रेणी लगा करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। क्योंकि चारित्रक मोह की जड़ तो पहले ही काट दी थी, रसावस्था में ही काट दी थी चारित्र मोह की जड़ तो। हाँ, 6 खंड 7 7 जड़ काट दिया था। इतने मनुष्य मरे होंगे, इतने भोग भोग किए होंगे, फिर भी पाप नहीं बंधे थे उतने, उतने पाप के परिणाम नहीं होते थे। शुद्धोपयोग बहुत बहुत शुद्धोपयोग में रहते थे वो, ऐसे भी होते हैं। इसका मतलब कि हमारी आत्मा में भी ऐसी सामर्थ्य है, हमारे आत्मा में भी ऐसी ही सामर्थ्य है अंतर्मुट में केवल ज्ञान देने के। बाहर उलझे तो गया, इसलिए 271 में कहें बाहर निकला ही क्यों, तू क्यों निकलता हो बाहर, छद्रव से क्या लेना देना है तेरा, छद्रव से तेरा तो कोई प्रयोजन है नहीं, वो तो अपने में है, तू तेरे में हो, तो छद्रव की माथाकुट को छोड़ तू। आकाश ऐसा है, धर्मास्त्र ऐसा है, पुद्गल ऐसा है, जैसा है वैसा है, तेरे लिए कोई काम का नहीं है, निकम्मा है सब, छोद्र तेरे लिए निकम्मा है। हाँ, સાંભળ્યા પછી ફાયદો થયો છે, સાંભળ્યા પેલા કઈ નથી થયું. માન તો એસા કે સમોષણ કા એન્વાયરમેન્ટ એસા હોતા હૈ, માન સ્તંભ કે પાસ આવે તો અચ્છે 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 કા માન ગલ જાવે. લેકિન જ્ઞાન તો ભગવાન કી વાણી સુનને કે પહેલે ઉસકો ભી હુઆ, ને કિતને ભી સમર્થ થે, ગણધર પદ કે યોગ્ય થે, ફિર ભી ભગવાન કા ઉપદેશ મિલા તો જ્ઞાન હુઆ, ઉપદેશ નહીં મિલા તો જ્ઞાન કાંસે હોતા. જ્ઞાન ભી હુઆ, ઉપદેશ સુનતે સુનતે મુનિ દશા ભી આઈ, કેવલ જ્ઞાન કો ભી પ્રાપ્ત કર લિયા. અંતર્મુખતા તીનો કા નામ ભેદ હૈ, એક હી બાત હૈ. અંતર્મુખતા કહો, નિર્વિકલ્પ દશા કહો, અંતરદશા કહો, એક હી બાત. અંતર સ્થિરતા, ઓ ચારિત્ર કી મુખ્ય થા સે સ્થિરતા કહેતે હૈ, તો એક હી બાત હૈ. નામ તીન હૈ, ભાવ તો એક હી હૈ. કોઈ એક ભાવ કો અનેક નામ સે પુકારતે હૈ, બોલ સકતે હૈ, ઉતની સી બાત. નિર્વિકલ્પ થયા, બાર બાર નિર્વિકલ્પ હોય. આત્મા કે સાધના ક્યા હૈ, ઇસ પ્રકાર સે ગહેરી ઊંડી ઊંડી સાધના ક્યા. ભગવાનજી તો પ્રત્યેક સાધના બહુ કરતે થે, અંતર્મુખી સાધના બહુ કરતે થે. હા, છે ચતુર્થ ગુણસ્થાન, ફિર ભી ચતુર્થ ગુણસ્થાન મેં ચારિત્રમુખી જડ કાટ સકતે હૈ, તો આગે કા કાલ હૈ વો સંક્ષેપ હો જાતા હૈ, સંસાર કા કાલ સંક્ષેપ હોઈ જતા હૈ. વો તો પીછે લગ ગયે, પીછે લગ ગયે, હમકો કિસી સે કોઈ મતલબ નહીં, કોઈ પ્રયોજન નહીં હૈ, હમ હમારે કામ મેં લગે હુએ હૈ. ગાઓ અબ કહેતા હૈ કે ક્યો એસા લક્ષણ છે પૂરા આત્મા કા નિશ્ચય હોતા હૈ, ઇસકા સ્પષ્ટીકરણ દેતે હૈ કે જહાં જહાં જાણે વહાં વહાં અનંતી પર્યાય હૈ, અનંત ગુણો કી જ્ઞાન કી પર્યાય હૈ, વહાં અનંત ગુણ કા પરિણમન ભી હૈ કે નહીં હૈ. સબ ગુણ પરિણમન તો કરી રહે હૈ, તો જહાં એક ગુણ કી પર્યાય હૈ વહાં દૂસરે અનંત ગુણ કી પર્યાય સાથ મેં હોતી હૈ, और सब पर्याय को मिलकर के आत्मा के पर्याय बोलने में आता है. और जहां जहां जानन गुण है वहां वहां आनंद गुण भी है, एक गुण अलग तो रहता नहीं, कोई आत्मा में एक गुण अलग थोड़ी ना रहता
है, नहीं
रहता सारा आत्मा में क्या, एक एक प्रदेश में आनंद गुण है. આત્મા કા કોઈ એક પ્રદેશ કો લે લો, વહાં આનંદ ગુણ હૈ, એક ગુણ વહાં કમ નહીં હૈ. તો જ્યાં જાણન ગુણ હૈ વહાં આનંદ ગુણ હૈ, જ્યાં જાણન પર્યાય વહાં આનંદ ગુણ કી પર્યાય હૈ. ઇસલિયે વહી આત્મા હૈ, જ્યાં આનંદ ગુણ હો આનંદ પર્યાય હો વહી આત્મા હૈ, એસા નિશ્ચય કરના ચાહીએ. ये बात रही कहने की, तो बात निश्चय की जो जो बात निश्चय उसको ऐसा निश्चय करना चाहिए, वो परिणमन करने की बात है, जानकारी करने की बात नहीं है. स्वरूप निश्चय कैसे होता है वो गुरुदेव ने समझाया, તો સમજ કરકે એસા પ્રયોગ હમારે મેં હો તો પરિણમન होगा, निश्चय करने का प्रयोग नहीं होगा तो निश्चय रूप परिणमन नहीं होगा। और ऐसे निश्चय होता है ऐसा जान लिया तो इससे भी निश्चय हो जाता है ऐसा भी बनता नहीं है। गुरुदेव ये बात कभी कभी करते थे जब शास्त्र में ये विषय सामने आता था, जैसे कि 144 गाथा में लिया कि प्रथम तो श्रुत ज्ञान द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना, तो वो बात खूब बहुत चलती थी। फिर भी कोई शोषण वाले विकल्प में नहीं चढ़ जाए इसलिए ये बात ज्यादा चर्चा में नहीं लेते थे। वो बात तो ऐसे हुई थी, समीचार गाथा 294 पर का प्रवचन में से बोल लिया है, 294 पर से 294 गाथा जो है वो प्रज्ञा छीनी वाली है, वेद ज्ञान की गाथा है। तो व्यक्तिगत अंदर की चर्चा में ये बात चली थी कि बहुत सी बातें हैं स्वरूप निश्चय में, लेकिन हम उतना नहीं कहते हैं क्योंकि क्षोभ सम में आ जाते हैं सुनने वाले और विकल्प में चढ़ जाते हैं, इसलिए वो बात ज्यादा नहीं लेते हैं, निश्चय करने की बात ज्यादा नहीं लेते हैं। तो वो तो ये क्या है, लाल बत्ती रखने की बात है कि बात तो स्वरूप निश्चय की ऐसी है, बिना स्वरूप निश्चय तो स्वानुभव होता नहीं है, इसलिए कोई सीधा स्वानुभव निश्चय किए बिना स्वानुभव की अपेक्षा रखे कि हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि हमको अनुभव हो जाए। जैसे कहीं लोग ध्यान में बैठते हैं, ध्यान के प्रयोग करते हैं, इस स्वरूप में मन को एकाग्र करने का प्रैक्टिस करो, स्वरूप निश्चय तो हुआ नहीं हो, तो बिना स्वरूप निश्चय हुए कोई ध्यान का प्रयोग करता है उसको अनुभव हो ऐसा कभी बन सकता नहीं है। तो परिश्रम वृथा नहीं जाए, निकम्मा नहीं जाए, इसलिए कुछ बात बता देते हैं, आगे की बात बता देते हैं। इसका क्या कारण, तो दूसरी लाइन पर नहीं चढ़ जाए, वो हेतु है उसमें। लेकिन आगे की बात बता दिया और विकल्प में कोई चढ़ जाए ऐसा होना चाहिए नहीं, तो प्रयोग होना चाहिए। ऐसे स्वरूप निश्चय करने करने के ऊपर तो बहुत से मिथ्यामृत लिए हैं कि 382 नंबर का है, कल पढ़ा था 382। तो पकड़े क्या थे, पकड़े क्या थे, वेदन तो पकड़ा तो नहीं, वेदन पकड़ने में आता नहीं, जानने का भाव पकड़ने में आता है, इसलिए अज्ञान अवस्था में तो अनुभव प्रकाश में तो वहां तक का कि तेरा ज्ञान जो पर को जानता है ना, यही ज्ञान स्वरूप की वानगी है, यहां से लिया है, क्यों पकड़ने में आवे वहां से ले, जो खड़ा है वहां से ले, मैं उसको जानता हूं उसको जानता हूं उसको जानता हूं, वो स्वरूप की वानगी है, उस स्वरूप का सैंपल लिया है, उसको लक्षण लिया है, तो समझाने के हिसाब से बात है। जो तात्विक रूप से देखे तो जो ज्ञान वेदन है वही लक्षण है, स्वसंवेदन सिद्धत्वात्। तीन सौ 83 है तो शायद 271 कलश पर होगा। ज्ञान गोष्ठी में समझा। પારા પેજ નંબર 103 વચનામૃત 382 આત્મા કો પહેચાનને કે લિયે ज्ञान सो आत्मा, ज्ञान सो आत्मा ऐसा कहा है, ज्ञान वही आत्मा है ऐसा कहा है, वो पहचान कराने का हेतु से कहा है। कारण कि ज्ञान वह प्रकट अंश है, स्वभाव का वो प्रकट अंश है। दूसरे गुण में आनंद आदि जो है इसका कोई अंश प्रकट नहीं है। आनंद की जगह प्रकट तो आकुलता है, इसलिए ज्ञान के प्रकट अंश द्वारा आत्मा की पहचान कराई है। आत्मा की पहचान ज्ञान का प्रकट अंश द्वारा कराई है, क्योंकि वहां स्वभाव अंश खुला है। जैसा प्रकट स्वभाव अंश है वैसा ही अप्रकट है। ज्ञान के प्रकट अंश को अंदर में वाड़े मोड़े तो पूरा अखंड हो जाए, सलंग
हो जाए।
द्रव्य गुण शुद्ध है वैसे पर्याय भी शुद्ध हो जाए, अंदर में अंतर्मुख होवे पर्याय तो शुद्ध हो जाए। आत्मा को ज्ञान के अंश से पहचान कराने का मूल हेतु तो यही है, यही मूल हेतु है। ज्ञान सो आत्मा ऐसा कहने के पीछे कोई प्रयोजन है या हेतु है वो तो आत्मा को पहचान कराने का है। इसलिए सारा समयसार में ज्ञान सो ही आत्मा, ज्ञान सो ही आत्मा, आत्मा ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है ऐसा कहने के पीछे आत्मा की पहचान कराने का हेतु है। वो बात जयचंद जी ने 246 कलश में लिया है, 246 के भावार्थ में वो बात लिया है कि इस शास्त्र में आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा, ज्ञान मात्र कहने का क्या प्रयोजन है, कि यही प्रयोजन है। तो प्रयोजन का बात 382 में खुला किया है।